ओम श्री परमात्मने नमः। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप योगी और चर्चा करते हैं आज ध्यान पर कि ध्यान होता क्या है, एकाग्रता किसे कहते हैं, ध्यान करना क्या होता है, ध्यान स्वतः होता है या किया जाता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको यहां मिल जाएगा। तो किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है। मंत्रों में ध्यान की परिभाषा देते हुए महर्षि घेरंड ने कहा था कि जब ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए तब उस अवस्था को वास्तविक ध्यान कहा जा सकता है। सप्त साधन की चर्चा करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष की यह कहकर व्याख्या की थी कि जिस प्रकार हम अपनी आंखों के सामने एक पदार्थ को स्पष्ट देख सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने मन के सूक्ष्म अनुभवों को अंतःचक्षु के सामने, मन दृष्टि के सामने स्पष्ट कर सकें तो उसे ध्यान की स्थिति मान लेना चाहिए। यहां पर एक बिंदु पर अधिक बल दिया गया है, वह है सूक्ष्म अनुभव को मन दृष्टि में स्पष्ट करना। यदि इस बात को समझ जाते हैं तो ध्यान समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार योग निद्रा के अभ्यास में पेड़, पौधों, वृक्षों, फूलों, फलों, पदार्थों और वस्तुओं का नाम लिया जाता है और कल्पना के द्वारा प्रत्येक चीज को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, तो प्रारंभ में हम उसे कुछ दिखाई नहीं देता। प्रारंभिक अवस्था मात्र काल्पनिक अवस्था होती है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन हम अपने मन में उस आकृति को बनाते रहते हैं। यदि खून कहा जाए तो वह दिखता नहीं, लेकिन मन में उसका एक प्रतिचित्र आ जाता है। इसको कहते हैं कल्पना या किसी कल्पित वस्तु को देखना। जब कल्पना की स्थिति गहरी होती है और वह चीज एक प्रतिचित्र के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई अंदर दिखाई देने लगती है, तब वह ध्यान की स्थिति कहलाती है। इसे एक दृष्टांत से समझ लेने का प्रयास कीजिए। एक बार मैंने कक्षा में विद्यार्थियों को बाहर के कमरों में बंद आंखों से देखने के लिए कहा और अपनी घड़ी हाथ से उतारकर अलग रख दी। कमरे में घोर अंधकार था और सबकी आंखें बंद थी। एक आदमी पीछे बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी मन दृष्टि से देखा कि मैंने अपनी घड़ी उतारकर सामने रखी और एक-एक चीज का वर्णन उसने किया, जिन्हें बंद आंखों से देखना संभव नहीं था। यह भी नहीं कह सकते कि उसने बेईमानी की, क्योंकि कमरे में प्रकाश ही नहीं था। मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था, तो पीछे बैठा व्यक्ति कैसे देखता? इस प्रकार की जो स्थिति आती है इसको हम ध्यान की अनुभूति मानते हैं। एक बार शुकदेव राजा जनक के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि लोग तुम्हें देह मुक्त कहते हैं, लेकिन तुम राजा हो। राजा होने के कारण तुम्हें सभी प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। दंड देना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है, संपत्ति जुटानी पड़ती है, दान करना पड़ता है, प्रजा की रक्षा करनी पड़ती है। इन सब कर्तव्यों के बावजूद तुम जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो? यह संभव नहीं है। इस पर राजा जनक ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें व्यावहारिक रूप से इसका उत्तर देंगे। उस समय नगर में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। उन्होंने सुखदेव जी के हाथ में तेल से लबालब भरा हुआ एक पात्र रख दिया और कहा कि तुम इसे हाथ में रखकर पूरा नगर घूमो। सुखदेव कहते हैं, इतनी सी बात, मैं एक तो क्या तीन चक्कर लगा लूंगा। राजा ने कहा, मेरे अंगरक्षक तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर एक बूंद भी तेल छलका तो ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। बहुत सावधानी से, सजगता के साथ, संतुलन का ख्याल रखते हुए एक एक कदम चलते हैं कि ठोकर न लग जाए, चोट न लग जाए और तेल छलके नहीं। पूर्व एकाग्रता के साथ पूरे नगर का चक्कर लगाते और वापस आते हैं। राजा पूछते हैं, नगर की सजावट कैसी है? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कौन सी सजावट? राजा कहते हैं, अरे तुम इतना घूमे और नगर की सजावट नहीं देखी? वे कहते हैं, मैं देखता कैसे, मेरे हाथ में तेल का पात्र जो था। राजा कहते हैं, ठीक ऐसे ही मैं रहता हूं। राजा उन्हें पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऊपर देखो। सुखदेव जी ऊपर देखते हैं कि एक भारी भरकम बर्छा घोड़े के बाल द्वारा टंगा है। राजा कहते हैं कि इसी के नीचे बैठकर मैं राजकाज करता हूं, पता नहीं कभी यह मेरे ऊपर गिर जाए और मेरी मृत्यु हो जाए। जब मैं सिंहासन में बैठता हूं, यही सोचता हूं कि यह अंतिम बार है, यह मेरा अंतिम क्षण है, हर क्षण मेरे लिए अंतिम है, इसलिए मेरा ध्यान हमेशा वहां रहता है, यहां नहीं। यह जो स्थिति सुखदेव ने अनुभव की, यह भी ध्यान की ही स्थिति थी। अंतर केवल इतना है कि सुखदेव के मन में भय था कि अगर एक बूंद तेल छलका तो मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। उनके मन में जो भय था उसकी एकाग्रता को बनाए रखा। जब यही एकाग्रता सहज रूप से व्यक्ति धारण करता है, तब यह ध्यान की स्थिति में परिणत हो जाती है। और ध्यान की इस अवस्था में मनुष्य जो कुछ सोचे या कल्पना करे वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ भी सोचे या कल्पना करे वह फलीभूत होती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। इसी को योग की भाषा में कल्प वृक्ष कहते हैं। ध्यान अभ्यास में एकाग्रता के कारण मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इस अवस्था में वह कल्प वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जो इच्छा रखोगे सो पूरी होगी। ध्यान में चेतना का प्रवाह तैल धारावत होता है, उसमें कहीं रुकावट नहीं आती। प्रत्याहार में आंतरिक चेतना होती है। अभी हम कुछ कर रहे हैं, मन भटक गया, पुनः उसको खींच कर लाए, फिर लगा दिया। जब तक 2-3 मिनट तक ख्याल रहेगा, मन वहीं लगा रहेगा। जैसे ही ख्याल हटेगा वैसे ही मन चक्कर लगाने लगेगा। इस प्रकार प्रत्याहार में सजगता और चेतना का आना जाना लगा रहता है। धारणा में इस क्रिया की गति को कम हो जाती है और स्वेच्छा अनुसार व्यक्ति अपने आप को एकाग्र या बहिर्मुखी बना सकता है। लेकिन ध्यान में स्वयं का प्रयास कार्य नहीं करता। ध्यान अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, बिना किसी अवरोध के अनवरत गतिमान चेतना की स्थिति। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान का अभ्यास नहीं होता, बल्कि ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया जाता है, ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है। जिस प्रकार तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते समय बिना रुकावट के मोटी धार निकलती है और जब वह दूसरे बर्तन में गिरती है तब पानी की तरह छलकती नहीं है, एक समान स्तर से भरनी शुरू होती है। यहाँ पर धार गिर रही होती है, केवल वही है पर आपको हलचल मालूम पड़ती है। ठीक उसी प्रकार ध्यान की स्थिति भी है, जहां पर छलके वहां प्रत्याहार और धारण की स्थिति। लेकिन जब मन छलके नहीं, बहिर्मुख अवस्था से अंतर्मुख अवस्था में प्रवेश करते समय विक्षेप न हो, तब वह अंतिम स्थिति है ध्यान की। मनुष्य संरचना के 3 मुख्य तत्व होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों में अलग अलग ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है और उस अनुभव को तीव्र और गहरा बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। ध्यान की स्थिति में अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए जब हम शारीरिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तब यह प्रक्रिया कहलाती है स्थूल ध्यान, और जब हम आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तब वह प्रक्रिया कहलाती है सूक्ष्म ध्यान। महर्षि घेरंड इन्हीं 3 अवस्थाओं की चर्चा करते हुए कहते हैं, स्थूलम ज्योति स्था सूक्ष्म ध्यानस्य विविधि त्रिविधिम विदुः। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम ज्योतिस्तेजोमयम तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली परदेवता। अर्थात स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के भेद से ध्यान 3 प्रकार का होता है। स्थूल ध्यान वह कहलाता है जिसमें मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान हो। ज्योतिर्मय ध्यान वह है जिसमें तेजो में ज्योति रूप ब्रह्मा का चिंतन हो। और सूक्ष्म ध्यान उसे कहते हैं जिसमें बिंदु में ब्रह्मा कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाए। तो यहां चर्चा करते हैं स्थूल ध्यान की। स्थूल ध्यान की दो विधियों का वर्णन महर्षि घेरंड ने किया है। पहली विधि है हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर ध्यान, और दूसरी विधि है ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान, हृदय में गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान। स्वीकृत हृदय ध्यानेत सुधा सागर उत्तमम तन मध्य रत्न द्वीपम तु सुर रत्नावालु कुब कायकम चतुर्दिक्षु नीप तरुम बहु पुष्प समन्वितम नेपो पवनम संकुल वैष्टितम परीखा इव मालती मल्लिका जाति कैसरश्च चंप कैस्त था पारी जाता है इस थल पद्म गंधर गंधामोदित दिग्मुख है तन मध्य संस मेरे धोती द्योगी कल्प वृक्षम मनोहरम चतुः शाखा चतुर्वेदम नित्य पुष्प फलान्वितम भ्रमरा कोकिला स्त्र गुंजति निगदंति च ध्याय तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम तन मध्ये तु स्मेर ध्योगी परतंग सुमुमो मनोहरम ततेस्त देवता ध्याय द्व्यधानम गुरु भाषितम यस्य देवस्य यद्रूपम यथा भूषण वाहनम तद्रूप ध्यायते नित्यम स्थूल ध्यानमिदं विदुः। अर्थात अपने हृदय पर ध्यान कीजिए, कल्पना कीजिए कि वहां एक बड़ा सागर अमृत से भरा हुआ है, उसके बीच में एक द्वीप है जो रत्नों से भरा हुआ है और वहां की बालू भी रत्न चूर्णों की है। इस द्वीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं जो द्वीपों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये पुष्प द्वीप की खाइयों की भांति प्रतीत होते हैं। अनेक अनेक सुगंधित पुष्प मालती मल्लिका चमेली केसर चंपा पारिजात स्थल पद्म आदि बिखरे हुए हैं। द्वीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है। इसकी चार शाखाएं चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह वृक्ष सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है। संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली एवं भ्रमर के गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस द्वीप में एक चबूतरा है। यह चबूतरा हीरे नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। पुनः कल्पना कीजिए कि उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इष्ट पर ध्यान कीजिए। इष्ट देव यदि गुरु हैं तो उनके स्वरूप को देखिए। उन्होंने शरीर में जो वस्तुएं धारण की हुई हैं, जैसे वस्त्र माला इत्यादि, उन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित कीजिए। इस विधि से विद्वान व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान करते हैं। इन मंत्रों को कुछ बिंदुओं के आधार पर समझना होगा। इनसे कुछ संदेह या प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहले हमने आपको कहा कि ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है, इसका अभ्यास नहीं किया जाता। अगर ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है तो यहां पर इस विधि का वर्णन क्यों किया गया है? इस विधि से हृदय में ध्यान करने का निर्देश दिया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि हृदय या हृदयाकाश में प्रभु का निवास होता है। उपनिषद ही नहीं, बहुत से संत महात्मा भी कहते हैं अपने दिल में खोजो। दिल में किसको खोजें? कौन प्रभु है? तो आसमान में क्षीर सागर रूपी समुद्र में बैठा हुआ है नारायण। अब अनाहत चक्र को समझ लें। अनाहत चक्र आकाश तत्व और अनहद नाद का प्रतिनिधित्व करता है। अनहद नाद को ओम के ध्वनि के रूप में सुना जाता है। ओम की ध्वनि का बाह्य रूप भ्रमर का गुंजन है। भ्रमर का गुंजन यहां उत्पन्न हो रहा है और उस नाद से परिपूर्ण द्वीप में जो कि रत्नों से बना है प्रभु का वास है। ये रत्न क्या है? ये मनुष्य के गुण है। अतः वह स्थान जो पूर्ण रूपेण शुद्ध और पवित्र है, जहां पर किसी प्रकार का प्रपंच और मल नहीं है, उस स्थान की कल्पना यहां पर अनाहत के रूप में की गई है और कहा गया है कि अनाहत में प्रभु का वास है। उन्होंने ईश्वर का रूप बतलाने के लिए जल की कल्पना की है। क्षीर सागर में ही तुम्हारे इष्ट देवता जिससे तुम उत्पन्न हुए हो, गुरु जिन्होंने तुमको ज्ञान दिया है बैठे हैं। समुद्र अनंत का भी प्रतिनिधित्व होता है। तत्व और समुद्र इन दोनों में भेद नहीं माना गया है। जल तत्व में अंतर है, लेकिन समुद्र और आकाश एक असीम तत्व को इंगित करते हैं। जब प्रत्याहार और धारणा के बाद हम ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं और हमारी चेतना बिना किसी अवरोध के अनवरत गतिमान होती है, तब इसका यही अर्थ हुआ कि हम कुछ मानसिक अवस्थाओं को पार कर गए हैं। पार करने के बाद ही हमें यह नैरतन्य प्राप्त हुआ है। यदि यह न कहा जा सके कि हमने पार कर लिया है, फिर भी इतना अवश्य कहते हैं कि अब हमारी सजगता निरंतर हो गई है। अतः वेग की जो स्थितियां थी या प्रत्यय की जो अवस्था थी, जिसके प्रभाव से हम अपनी एकाग्रता के केंद्र से हट जाते हैं, वे समाप्त हो गई। जब एक बिंदु पर पूर्ण रूपे एकाग्र होकर हम उस स्थिति का अनुभव करने लगते हैं, तब भ्रमर के गुंजन के रूप में अनहद नाद का अनुभव होने लगता है। हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और ज्ञान चक्षु खुलने से कल्प वृक्ष, जिसकी चार शाखाएं हैं, दिखाई देने लगती है। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समस्त भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश इन चार वेदों में है। जब हम अपने मुक्त स्वभाव को पहचानने लगते हैं, अपने गुणों को देखने लगते हैं, तब वह ज्ञान, वह बोध, वह सजगता ज्ञान चक्षु को जागृत करती है, जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ छिपा नहीं है। समस्त ज्ञान स्पष्ट रूप से वेदों के रूप में अर्थात प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में ईश्वर या गुरु के रूप अथवा मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्थूल ध्यान का लक्ष्य है मूर्ति। यह बात यहां विशेष प्रयोजन से कही गई है कि इस स्थिति में पहुंचकर कहीं ऐसा ना हो कि मैंने प्राप्त कर लिया है या ज्ञान हो जाने से अहंकार की वृद्धि हो। इसलिए गुरु रूप ईश्वर तत्व पर या ईश्वर तत्व के एक रूप अथवा मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए, ताकि यह ज्ञान बना रहे कि यह इनकी देन है। नाहम करता हरि करता, हरि करता ही केवलम। अतः अहंकार को पुनः पनपने न देने के लिए, अहम कर्ता की भावना को पुनः जागृत न होने देने के लिए ईष्ट या गुरु पर ध्यान को केंद्रित करना आवश्यक माना गया है। यहाँ पर फिर एक बात सामने आती है कि ध्यान की इस स्थिति में भी जहाँ अनहद नाद जैसे परानाद की अनुभूति हो रही है, मनुष्य अपनी बुद्धि से मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि अंतत गोत्वा उस स्थिति का विश्लेषण बुद्धि से ही होगा। बुद्धि से पुनः कोई नकारात्मक तत्व न पनपे, वह पुनः हमें नीचे खींचकर संसार के विषयों की ओर न ले जाए। इस कारण बुद्धि को निर्मूल करने के लिए ईश्वर तत्व पर चिंतन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि साधना मार्ग में पतन के रास्ते बहुत होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अंतिम अवस्था की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे निम्न प्रवृत्तियां प्रबल होती जाती हैं। यह क्या, यह आदमी तो मेरे चंगुल से भाग रहा है, पकड़ो इसे। पहले कपड़े को पकड़ती है, कपड़े से अगर आप पकड़ में नहीं आते तो हाथ पकड़ती है, और हाथ भी पकड़ में नहीं आता तो अंत में गला पकड़ती है। भौतिकता और आध्यात्मिकता का अंत में जो संघर्ष होता है वह दुर्जय है। बुद्ध के जीवन में यह संघर्ष हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने न जाने कितने दानवों से संघर्ष किया था। मार नाम के दानव ने आकर उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। ऐसी घटना आपको प्रत्येक महात्मा के जीवन में दिखाई देगी। महर्षि घेरण्ड ने ऊपर वर्णित बिंदुओं के अंतर्गत स्थूल ध्यान के प्रथम चरण का वर्णन किया है। ध्यान की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए चेतना की सामान्य स्थिति और एकाग्र अवस्था को भी समझना चाहिए। जब हम किसी गोले को हम अनेक नामों से पुकारते हैं या कोई ऐसा गोला बनाते हैं जिसके चारों ओर कुछ किरणें आ रही हो या चारों ओर से कुछ किरणें आ रही हो, तो मन को क्षेत्र कहें, चेतना को क्षेत्र कहें या जीव के अनुभव का क्षेत्र कहें, अपनी समझ के अनुसार हम इसे चाहे जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अभी हम इसे चेतना का क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि अगर हम मन कहेंगे तो इसमें विभक्ति आ जाएगी, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की। अगर जीवात्मा के अनुभव का क्षेत्र कहते हैं तो इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण आदि के अनुभव आ जाएंगे। इसलिए अभी हम द्वंद्वात्मक विचारों से हटकर इसे चेतना का क्षेत्र कहेंगे, जिसमें हम सब कुछ सम्मिलित कर सके। इस कौल क्षेत्र के द्वारा संसार के साथ हमारा संबंध है। क्या चेतना संसार के साथ संबंध जोड़ती है? नहीं। उदाहरण के लिए अगर यह कहा जाए कि मेरे मन में विचार आते हैं, तो क्या ये विचार चेतना के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं, ये चेतना की एक स्थिति से उत्पन्न हो रहे हैं, चेतना के क्षेत्र या स्वरूप से नहीं। अगर हम कोई कर्म करते हैं तो इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? चेतना से मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं। परिस्थिति और अनुभव के अनुसार बुद्धि के निर्णय के पश्चात क्रिया होती है। अतः यहां पर चेतना का रूप एक स्थिति का रूप है। जैसे बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है लेकिन उसकी अनुभूति पूरे कमरे में होती है, चेतना एक बल्ब के समान है। उसकी जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं या परिणाम होते हैं, उनके प्रभाव को हम अपने जीवन में स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। यहाँ पर बल्ब और उसके प्रकाश में भेद किया जा रहा है। प्रकाश के दिखाई देने का अर्थ है किसी संबंध का सकारात्मक या नकारात्मक परिवार। जीव को जो अनुभव होते हैं वे चेतना द्वारा प्रेरित माने जाते हैं। गोले से जो लकीर बाहर निकल रही है वह है परिणाम। ये परिणाम तभी होते हैं जब संसार से जीव का संबंध होता है। जन्म लेने के पहले भी तो संसार था और मरने के बाद भी रहेगा, लेकिन हम अपने जीवन काल में स्वयं को संसार में अनिवार्य मान लेते हैं कि मेरे बिना काम हो ही नहीं सकता। काम तो पहले भी हो रहा था और बाद में भी होगा, लेकिन पहले हम एक स्थिति या रूप या शरीर में नहीं थे, इसलिए व्यक्त के साथ हमारा संपर्क नहीं था, व्यक्त रूप में हमारी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब हम व्यक्त रूप में आते हैं और देखते हैं कि मैं यह व्यक्ति हूं, मेरा ऐसा सोचना है, रहना और करना है, तब इसे हम नाम दे सकते हैं विषय सजगता। इस सजगता को गोले से बाहर निकालती हुई रेखा को आप इसको दर्शा सकते हैं। ध्यान को समझने के लिए विषय सजगता को जानना जरूरी है। हम चेतना रहित नहीं है, चेतना हमारे भीतर है, लेकिन इस क्षण चेतना का आभास हमें नहीं हो रहा है। जैसे जैसे एक विषय का अनुभव शक्तिशाली होता जाता है, वैसे वैसे चेतना का स्थानांतर होता है। अगर मन में भोग का विचार आ जाए और यह विचार मन में छा जाए तो उस समय कुछ दूसरी चीजें सुनाई नहीं देंगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति फल का डब्बा लेकर कमरे के अंदर प्रवेश करे तो सबकी दृष्टि उधर घूम जाएगी, क्योंकि नई घटना घटी और चेतना या सजगता का तुरंत वहां स्थानांतर हो गया। विषय भोग के पीछे भागना, विषय की सजगता या विषय में चेतना का स्थानांतरण, यह हमारी सामान्य स्थिति है। जीवन पर्यंत इसे कोई नहीं बदल पाता। हाँ, कुछ महान लोग होते हैं जो बदल देते हैं, लेकिन सामान्य लोग नहीं कर पाते। अब इसके बाद दूसरी स्थिति आती है। एक सर्कल में बाहर की ओर, बाहर न जाकर अंदर की ओर जब हम देखते हैं, अभिमुख होते हैं, तो अंदर जाने की इस प्रक्रिया को हम प्रत्याहार का नाम देते हैं। यहां पर एक ही परिवर्तन है कि हम बाहरी विषयों से अपनी सजगता को अब हटा रहे हैं। यह प्रत्याहार की प्रारंभिक अवस्था रही है। मन के क्षेत्र में भी अभी हमने प्रवेश नहीं किया है। जो पहले बाहर जा रहे थे उनका चेहरा अंदर की ओर हो गया है, लेकिन स्थान वही है। कहने का तात्पर्य है कि विषयों के पीछे जो हमारी सजगता भागती है, उसे वहां से हटाकर मन या चेतना के क्षेत्र में समाहित करने का प्रयत्न शुरू कर रहे हैं। यह प्रत्याहार की स्थिति है। प्रत्याहार की अवस्था में मन व्यक्ति मन में प्रवेश नहीं करता, अतः मन अंतर्मुखी नहीं होता। योग सूत्रों तथा अन्य स्थानों पर समझने के लिए लिखा गया है कि मन अंतर्मुखी हो जाता है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया है सजगता को विषयों से हटाना। इसके बाद स्थिति आती है जब हम चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब हम चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और विषयों से हमारा मन या हमारी सजगता हट जाती है, तब यह धारणा की स्थिति कहलाती है। अब हम चेतना के क्षेत्र के भीतर भी पहुंच चुके हैं। वह चेतना का क्षेत्र है जहां, अगर आप एक चित्र के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं तो देखिए, किताब में लिखा हुआ भी है और दिया हुआ भी, आप वहां पे जाकर इसको चित्रों को देख सकते हैं। तीन त्रिकोण तीन गुणों के परिचायक हैं। तीन त्रिकोण बनाए गए हैं जिसमें एक त्रिकोण रिप्रेजेंट करता है सात्विक, दूसरा करता है राजसिक और तीसरा करता है तामसिक। तामसिक का अर्थ होता है स्थिति स्वभाव, राजसिक का होता है क्रियाशील तत्व और सात्विक का अर्थ होता है प्रकाश स्वभाव। प्रकाशशीलत्व ये गुणों के रूप हैं। अर्थात त्रिभुजों के मध्य में एक बिंदु है जिसको हम परमात्मा या आत्मा या जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। बिंदु और त्रिकोण के बीच का जो स्थान है वह शून्य अवस्था है। मन बुद्धि चित्त के रूप में जो चीजें दिखलाई दे रही हैं वह वास्तव में कला या प्रकृति है। इस प्रकार हम कला गुण और बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। कहा जाता है कि बिंदु से नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है। बिंदु बाह्य व्यक्त चेतना का मूल आधार है। उसे चाहे आप ईश्वर कहें या परमात्मा कहें या मात्र बिंदु ही कहें, वेदों में उसी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति और विलय का केंद्र वही है। अंत में सब उसी में समाहित हो जाते हैं और वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको अनहद नाद या परानाद कहते हैं। परानाद का अर्थ होता है जो अपर नहीं है, जो व्यक्त नहीं अव्यक्त है, जो परिणाम नहीं मूल क्रिया है, जो प्रतिक्रिया नहीं क्रिया है। अनहद नाद या अनहद का भी यही अर्थ होता है, जिसे सुना न जाए, जिसको कोई बजाने वाला नहीं है। यदि हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो उसके लिए गुणों और अंतकरण का होना आवश्यक है, चाहे स्थूल ध्वनि हो चाहे सूक्ष्म ध्वनि हो। लेकिन कहा गया है कि यह उस अवस्था के भी परे है। अतः अनहद नाद और परानाद में कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे हम चेतना के क्षेत्र के भीतर ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे विभिन्न सीमाओं से गुजरते हैं। पहली ही बार में शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं करते। जैसे पुराने जमाने में किले में दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए अनेक दरवाजे रहते हैं या रहते थे। अगर एक दरवाजा टूट जाता तो दूसरे पर मोर्चा बांधते थे, दूसरा टूट जाता तो तीसरे पर मोर्चा बांधते थे। यहां पर यह सजगता के ऊपर निर्भर है। जब तक हम सजग रहते हैं और सतर्कता पूर्वक देखते हैं, तब अनुभव करते हैं, तब तक हम विभिन्न अवरोधों को देखते हैं। लेकिन जब कभी हम अपने आप को यूं ही छोड़ देते हैं, तब हमारे मन की सजगता इन अवरोधों को पार कर जाती है और क्षणिक रूप से कुछ विशेष आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं। जब सजगता इस अनुभव को विषय के रूप में बदलकर उधर केंद्रित होने लगती है, तब एकत्व स्थापित हो जाता है। क्योंकि उस अनुभव को यदि हम विषय के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उस असीम अनुभव को विषय के रूप में वर्णित करके सीमित कर रहे हैं। जब हम विशेष प्रकार के विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं, योग निद्रा की स्थिति में या रात्रि को सोते हम बहुत विश्रांत हो जाते हैं, तब बाहर के संसार से हमारा मन हट जाता है, लेकिन अंदर जागृति रहती है। स्वप्न देखते हैं तो मालूम होता है मैं तो स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन हर समय उस सजगता को बनाए रखना कठिन है। योग निद्रा करते समय अगर कुछ अनुभव होता है तो मालूम रहता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूं तो उसकी याददाश्त नहीं रहती। ध्यान के समय एक अच्छी अनुभूति होती है, लेकिन मैं बाहर निकलता हूं तो उसको पुनः नहीं ला सकता। वह स्मृति में छिप जाती है। यदि आप इस अनुभव को एक भोग या आकर्षण के रूप में न देखें तो यह कुछ देर के लिए रहेगा। इसलिए योग निद्रा के अभ्यास के समय निर्देश दिया जाता है कि बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है, केवल सजग रहो। जहां विश्लेषण होने लगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वह योग निद्रा नहीं रह जाती। यह निर्देश केवल योग निद्रा के संबंध में नहीं है, वरन किसी भी ध्यान की अवस्था में है, किसी भी प्रकार की आंतरिक क्रिया में इस निर्देश का पूर्ण रूपेण पालन होना चाहिए। अभी तक हमने कुछ चित्रों के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हुए मन, बुद्धि और चित्त को समझा। अब अहंकार को समझने का प्रयास करेंगे। जब बिंदु से उत्पन्न नाद का संपर्क त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों सत्व, रज और तम से होता है, तब अहम कर्ता का भाव आता है, मैं करने वाला हूं। जब तमस से इसका संपर्क होता है तब घमंड के रूप में अहम की अनुभूति होती है। इसके पश्चात जब इन तीन गुणों का संबंध मन, बुद्धि और चित्त से होता है, तब वह एक व्यक्ति का आकार धारण कर लेता है और अहंकार कहलाता है। परमात्मा को जानने का श्रेष्ठ साधन ध्यान ही है। जो लोग देह के आकार को महत्व नहीं देते, उन्हें भी यह मानना ही होगा कि ध्यान के लिए कोई आकार या कोई रूप अवश्य चाहिए। सहस्त्रार में गुरु के स्थल रूप पर ध्यान। सहस्त्रार प्रदेश में महापद्म है, जिसके 1000 दल हैं, और उसके मध्यवर्ती प्रदेश में 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। इन दलों का रंग सफेद और तेज पूर्ण है। इन 12 दलों की शोभा बढ़ाने वाले बीज मंत्र है स, छ, म, ल, व, र, यू, है, ख और फ्रें। कमल के केंद्रीय भाग में तीन रेखाएं अ, क, थ वर्ण सहित हैं। ये तीन रेखाएं मिलकर एक त्रिशूल की रचना करती हैं। इस त्रिभुज के कोणों का सांकेतिक शब्द हम, थम और लम है। त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र ओम स्थित है। ध्यान के समय सहस्त्रार में यह देखने का प्रयास कीजिए कि सहस्त्र कमल के मध्य में ध्वनि और प्रकाश के प्रतीकात्मक रूप में हंसों का एक जोड़ा बैठा है। हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है। श्वेत पद्म में बैठे हुए गुरु के दो हाथ और तीन नेत्र हैं। श्वेत पत्र और ये श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों से बनी माला पहने हुए हैं, और उनके वाम भाग में लाल वस्त्र धारण किए उनकी शक्ति सुशोभित है। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। यह सहस्त्रार में स्थूल सूक्ष्म ध्यान का वर्णन है। इसकी विशेषता है सहस्त्र दल कमल, इसके पश्चात 12 दलों वाला कमल, जिसके प्रत्येक दल पर बीज मंत्र लिखा है, नाद और बिंदु का प्रतीक, दो हंस और गुरु और उनकी शक्ति। अनाहत ध्यान के पश्चात जब चेतना सूक्ष्म होती है और उस नाद की अनुभूति भीतर में उत्पन्न होती है, तब चेतना में परिवर्तन होता है। जिस अवस्था को यहाँ पर सहस्त्र दल कमल के रूप में बताया गया है, वह है चेतना के विभिन्न प्रत्ययों की अवस्था। क्योंकि जब तक चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध और एक रूप नहीं होती, जब तक समाधि या मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं होती, ये प्रत्यय वहां पर बने रहते हैं। ये प्रत्यय बीज रूप में है, आदि इच्छा, आदि क्रिया या आदि संकल्प का रूप। कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रत्ययों का कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त होती है। अगर हम यह मान लें कि हमारे भीतर एक प्रत्यय है और उसका रूप तामसिक है, हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, अनंत तक पहुंचते हैं, लेकिन उस तामसिक प्रत्यय के कारण हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के परे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर किसी न किसी रूप में कोई संस्कार या कोई कर्म या कोई वासना प्रकट हो जाएगी, और उनका निराकरण फिर हम हर समय करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि सूक्ष्म में जाने के पूर्व प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा जहां तक संभव हो उसके भीतर उत्पन्न अनुभवों और अवस्थाओं को पहचान लेना चाहिए। जब पहले से ही हम क्षय का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तब अंत में हमारा कार्य क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। अतः सहस्त्रार के दो सहस्त्र दल हैं, वे कारण अवस्थाओं के बीज रूपी प्रत्ययों के प्रतीक हैं। योगियों का मत है कि मंत्र के अभ्यास द्वारा अन्य प्रत्ययों को निर्मूल किया जा सकता है। इसी कारण उन्होंने सहस्त्रार में भी हजार मंत्रों को लिखा है। उन्हें कुछ तो अनुभव हुआ होगा जिसके आधार पर उन्होंने इनके निराकरण का एक मार्ग खोजा। सहस्त्र दल के बीच में पुनः 12 दल का कमल है। ये 12 दल जागृत, स्वप्न और तुरीय की 3 विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। जागृत स्वप्न, जागृत निद्रा, जागृत तुरिया, स्वप्न निद्रा, स्वप्न तुरिया, स्वप्न जागृत, निद्रा तुरिया, निद्रा जागृत, निद्रा स्वप्न और तुरिया जागृत, तुरिया स्वप्न और तुरिया निद्रा, ये 12 अवस्थाएं हैं। योगियों का मत है कि प्रत्येक अवस्था में चाहे वह जागृत हो चाहे निद्रा हो, अगर आंतरिक जागरूकता रहे, आंतरिक सजगता रहे, तो हम इन 4 अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान भी संदर्भ में धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। वह केंद्र जहां पर जागृत, स्वप्न और निद्रा की स्थिति में आप 4 अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं, वहां पर नाद और बिंदु रूपी 2 हंसों की कल्पना की जाती है। बिंदु एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय केंद्र है जिससे सूक्ष्म ब्रह्मांडीय परिणति होती है और अंत में वही परिणाम सूक्ष्म ब्रह्मांडीय सत्ता में विलीन हो जाता है। इस स्थिति को रूप देने के लिए जिस शक्ति का आवश्यकता होती है वह है नाद। ये दोनों शुद्ध तत्व माने गए हैं और इनकी तुलना हंस के जोड़े के साथ की गई है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हंस जल और दूध को अलग कर सकता है। शुद्ध और अशुद्ध तत्वों को वही मनुष्य अलग कर सकता है जो उस प्रकार की प्रतिभा, उस प्रकार के बोध या ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर शिव और शक्ति दोनों तत्व मनुष्य के भीतर पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं और वह दोनों का अवलोकन करता है। साथ ही कहा गया है कि इन हंसों की तुलना गुरुपादिकाओं से भी की जा सकती है। अब गुरुपादुका से तुलना यहाँ एक भावनात्मक बिंदु है, यहाँ पर है। जब हम शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं तब भेद किसका? जब समस्त सृष्टि ही आत्म में दिखाई देती है, जब समस्त सृष्टि ही ईश्वर का रूप दिखाई देती है, तब यहाँ भेद किसका? जब हम खुद उसका अनुभव करते हैं तब भेद किसका? लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैं का थोड़ा बहुत अंतर रहता ही है, परंतु जब मैं शुद्ध तत्व को देखता हूँ और वहां पर पहुंच चुका हूँ तब मेरे भीतर के सभी विकार, व्यवधान और अवरोध मिट चुके होते हैं और मैं समर्पण की अवस्था में रहता हूँ। मैं उस रूप में अपने आप को नहीं देखता, मैं उस रूप से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर भक्ति मार्ग का अंश जोड़ा गया है। मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं उनसे एक होना चाहता हूँ। यदि मैं अपने आप को राम या कृष्ण मानने लगूं तो फिर एक होने का प्रश्न ही कहाँ। यह समर्पण की जो भावना है पादुका में दिखलाई जाता है। शुद्ध तत्व को आत्मा की आहुति में मैं, फिर मैं न रहूं। कहा गया है कि इसी पद में 3 रेखाएं मिलती हैं जो एक त्रिभुज बनाती हैं। इस त्रिभुज के 3 कोनों में मंत्र लिखे हैं, हम, लम, क्षम। लम पृथ्वी तत्व या मूलाधार चक्र का मंत्र है, हम और क्षम आज्ञा चक्र के मंत्र हैं। सहस्रार एक ऐसा केंद्र है जिसने सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तत्व को एक त्रिकोण में जोड़ा है। यह अधोमुखी त्रिकोण शक्ति तत्व को दर्शाता है। इस अधोमुखी त्रिकोण में नाद और बिंदु रूपी हंसों का जोड़ा है और वहां गुरु श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत माला पहने बैठे हैं। श्वेत तो निर्मल, शुद्ध, पवित्र और प्रकाशशील तत्व का प्रतीक है, अर्थात जो शुद्ध है, विकार रहित है, प्रकाशित है, वह है गुरु या ईश्वर। उनके बाजू में लाल वस्त्र धारण किए शक्ति बैठी है। कमलात्मिका शक्ति को सहस्त्रार जहां से विकास होता है की देवी माना गया है, जो चेतना के विकास की प्रतीक है। इस प्रकार नाद, बिंदु और विकास की शक्ति एक साथ त्रिभुज में बैठे हैं। इस प्रकार के ध्यानाभ्यास को स्थूल ध्यान कहते हैं। जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध मन और उसकी विचित्र अवस्थाओं से है। ध्यान का अभ्यास आंतरिक शांति और उच्च अनुभवों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, ये तो परिणाम है। ध्यान का अभ्यास किया जाता है स्वयं को देखने और समझने के लिए। स्वयं को समझने की जो कला है यह अपने आप में एक विज्ञान है, मनोविज्ञान या आत्मविज्ञान है। यह आत्मविज्ञान ध्यान की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। मनुष्य का जीवन बहुस्तरीय है। इस जीवन काल में हम अनुभव तो अवश्य करते हैं कि हम विपरीत अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन इन अवस्थाओं का सामना कैसे किया जाए, परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, यहीं पर कभी कभी स्वयं के साथ संघर्ष होता है। क्योंकि इस बहुस्तरीय जीवन में सबसे बड़ी समस्या है हमारे मन की विवेक शक्ति। हर मन के भीतर समझ की एक स्थिति रहती है और उस अवस्था या स्थिति से स्वयं को हटाने में हम अक्षम अनुभव करते हैं, क्योंकि जब हम यह प्रयास करते हैं तब हमारा आधार हिल जाता है, असंतुलित हो जाता है। जीवन में इस असंतुलित अवस्था से गुजरना मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है। ऐसा न हो तो व्यक्ति काम कर सकता है, संपत्ति जमा कर सकता है, शरीर में रोग हो तो उसके निराकरण के लिए प्रयत्न कर सकता है, लेकिन हमारा प्रेरणा केंद्र या इच्छा केंद्र है मन। अगर वही निराधार हो और निराधार हो जाए तो हम सहारा खोज नहीं पाते और दूसरों से वह सहारा मिल भी नहीं पाता। यह सामान्य अवस्था है समाज में, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन, परिवार और समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। यही अशांति का मुख्य कारण भी है। लेकिन जब विवेक शक्ति जागृत होती है और मनुष्य निष्पक्ष भाव से अपने जीवन के सभी स्तरों को देख सकता है और अपनी कमियों को पहचान सकता है, तब उसके जीवन में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। यहाँ पर जिस जिस चीज की चर्चा की गई है, चाहे वह अनाहत में ध्यान के समय हो या सहस्त्रार में, उस सब ध्यान में प्राप्त अनुभव की चर्चाएं हैं। यह नहीं बताया गया है कि अनुभव को प्राप्त करने के लिए किस अवस्था से गुजरना पड़ेगा या इसकी प्रारंभिक क्रियाएं क्या हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था को समझने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व, मानसिकता, व्यवहार और विचारधारा के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में स्थितियों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों में हमारी मानसिकता का अलग अलग रूप सामने आता है। बहुत बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, आश्रम में आकर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे आभास होते हैं, लेकिन घर में हमें कुछ होता ही नहीं। उन्हें यह समझाना कठिन हो जाता है कि जब मनुष्य किसी विशेष परिसर या वातावरण में रहता है और वह वातावरण उसके अनुकूल होता है, तब वह उसके व्यक्तित्व से एक प्रकार की भावना, विचार, व्यवहार एवं कर्म को उभारना और उभार कर सामने लाता है। महर्षि घेरंड ने ध्यान की स्थिति का नहीं वरन परिणाम का वर्णन किया है, अंतिम लक्ष्य की चर्चा की है, प्रक्रिया की नहीं। प्रक्रिया व्यक्ति को खुद समझनी पड़ती है। यह तभी संभव है जब विवेक शक्ति, समझने की क्षमता, सही और व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। यही अंतर है एक योगी और भोगी में कि योगी एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न करता है और भोगी एक संकीर्ण वातावरण में रहकर उसे प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम अपने आप को भोग प्रवृत्ति से निवृत्त कर किस प्रकार अपने भीतर योग प्रवृत्ति को जागृत करें। एक अवस्था को सिद्ध करने के लिए, एक अवस्था में पूर्णता प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, और परिश्रम तभी संभव है जब व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में हो। हमारा मन हमेशा नए नए विषयों के पीछे भागता है। कभी वह एक विषय की ओर आकृष्ट होता है तो कभी दूसरे, कभी कभी बहुत से विषय एक साथ अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और जब मन बहुत से विषयों की ओर एक ही समय में आकृष्ट हो जाता है तब हम मानसिक विक्षिप्तता एवं चंचलता का अनुभव करते हैं। योग सूत्रों में भी कहा गया है कि किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करने का प्रयास किया जाए, पहले एक तत्व धारणा के द्वारा, यदि उससे नहीं होता तो प्राणायाम के अभ्यास द्वारा, यदि इससे नहीं होता तो एक गुण के द्वारा, और यदि इससे भी नहीं होता तो फिर किसी दूसरे तरीके से। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं में एक ही विधि काम करती है, एक ही रहस्य है, बहुविस्तरीय मन को व्यापक सजगता से देखना। जो इस बात को समझ ले उसे योग की आवश्यकता नहीं, अध्यात्म की आवश्यकता नहीं, ईश्वरवादी या निरीश्वरवादी बनने की आवश्यकता नहीं, आस्तिक या नास्तिक बनने की आवश्यकता नहीं, वह पूर्ण मानव अवश्य बन जाएगा। अंत में जब हम स्वयं को जानकर समझकर अपनी विभिन्न समस्थाओं को देखकर अनुभवों को प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं, तब व्यक्तित्व के मूल में पहुंचकर अपने भीतर के गुणों से हमारा सामना होता है। गुणों का सामना होने तक जो अवस्था रहती है उसे महर्षि घेरंड ने स्थूल ध्यान की संज्ञा दी है। जब गुणों को पार किया जाता है तब एक स्थिति आती है जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं शून्य अवस्था। लेकिन वह शून्य अवस्था सात्विक अर्थ में शून्य अवस्था नहीं है, वहां पर भी क्रिया हो रही है, वहां पर भी स्पंदन है, नाद है, एक अनुभव है। शून्य इसलिए कहा गया है कि अभी तक अपनी जानकारी के अनुसार व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम हैं उन्हें हमने पार कर लिया है, गुण तक जानते हैं, गुणों को हम पार कर गए हैं। अब इसके बाद जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं वह है अज्ञात क्षेत्र, क्योंकि उसका वर्णन कहीं नहीं किया गया है और न कोई कर सकता है, वह केवल अनुभव की वस्तु है, इसलिए उसे शून्य अवस्था का नाम दिया गया है। लेकिन योग कहता है कि वह शून्य नहीं, वहां पर भी स्पंदन है, वहां पर भी क्रिया है, वहां पर भी अनुभव है, वहां पर भी प्रकाश है। वह जब शून्य अवस्था में ध्यान किया जाता है तब उसे तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान कहते हैं। महर्षि घेरंड ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। ज्योति ध्यान। मूलाधारे कुंडलिनी भुजंग कारु रूपिणी तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कलिकाकृति ही ध्याय तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम भ्रुवो मध्ये मन उरुधे यत्तेज प्रणवात्मकम ध्याय ज्वला वली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही। मूलाधार में सर्पाकार रूपिणी कुंडली है, यह कुंडलिनी यही दीपक की लो के रूप में आत्मा का निवास है। यहां तेजो में परात्पर ब्रह्मा का ध्यान करना ही तेजो ध्यान है, अर्थात ज्योति ध्यान है। भौहों के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में जो प्रणात्मक ज्योति है उस ज्वालामुखी युक्त ज्योति का ध्यान ही ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। महर्षि घेरंड कहते हैं कि प्रकाश पूर्ण असीम सत्ता ब्रह्मा परमात्मा या आत्मा पर जो ध्यान किया जाता है उसे तेजो ध्यान या ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। उनके अनुसार मूलाधार में सर्प आकृति में कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है और उसी स्थान में दीपक की लो के रूप में मनुष्य की आत्मा का निवास है। मूलाधार में आत्मा के इस रूप का ध्यान कीजिए। तात्विक दृष्टिकोण से देखने पर मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और पृथ्वी तत्व सृष्टि की अंतिम परिणति अंतिम अवस्था है। हम पृथ्वी तत्व के आकर्षण के भीतर अपना जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी तत्व यह भूमि या ग्रह नहीं और न मिट्टी बालू कंकड़ आदि है। पृथ्वी तत्व है स्व परिभाषित पदार्थ या ऊर्जा। संपूर्ण सृष्टि का रूप पृथ्वी तत्व का रूप होता है, चाहे आप उसे कुछ भी कहें। सभी प्रकार के जीवन, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं या कला की उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से होती है। वह चेतना जिसे लोग जीवात्मा कहते हैं अंतत गोत्वा पृथ्वी तत्व से ही प्रफुष्टित होती है, प्रस्फुटित होती है। तो पृथ्वी तत्व में स्वयं की आत्मा के प्रकाश पर ध्यान अर्थात सृष्टि की अंतिम स्थिति में आत्मा का ध्यान तेजो ध्यान कहलाता है। जिस प्रकार बल्ब और बल्ब के प्रकाश तथा सूर्य और सूर्य के प्रकाश में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और आत्मा की अनुभूति में भी अंतर है। सूर्य तो एक केंद्र है और वह प्रकाश जो सूर्य से निकलता है चारों तरफ व्याप्त है। बल्ब से बिजली के प्रकाश की उत्पत्ति होती है, लेकिन वह प्रकाश पूरे कमरे में व्याप्त होता है, केवल बल्ब तक सीमित नहीं रहता है। तो दोनों अभिन्न, बिना बल्ब के प्रकाश नहीं और बिना प्रकाश के बल्ब नहीं, लेकिन फिर भी एक अंतर उनमें दिखाई देता है। केंद्र एक जगह है लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ है, अतः वह जो प्रसार या व्यापकता है और उस व्यापकता में जो स्थूल और सूक्ष्म अनुभव होता है, उनका अनुभव करना, उन्हें देखना और उन अनुभवों में आत्मा के ही रूप को देखना ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। यह एक तरीका है। ज्योतिर्ध्यान का दूसरा तरीका है भ्रुवो मध्य मन ऊर्ध्वे च यत् तेजः। प्रणवात्मक भ्रू मध्य में मस्तिष्क से प्रकाश से परिपूर्ण प्रणव स्थित है। ध्याय ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही। यह प्रणव आत्मा का प्रतीक है। इस चमकीले प्रकाश पर किए गए ध्यान को प्रणव ध्यान कहते हैं। पहले कहा गया है कि मूलाधार में आत्मा का निवास है, फिर कहते हैं कि भ्रू मध्य में आत्मा का निवास है। दोनों जगह कैसे हो सकता है? अगर हम महर्षि गिहरणी की परिभाषा के अनुसार चलें, तो यह कहा जा सकता है कि आत्मा के भी दो रूप होते हैं। एक होता है बाह्य व्यक्त रूप जो पृथ्वी तत्व में है, दूसरा होता है अव्यक्त रूप जो भ्रू मध्य में है, आज्ञा में है। आज्ञा चक्र शुद्ध अवस्था, शुद्ध प्रकृति या शुद्ध चेतन का प्रतीक है। उसके बाद ही विभिन्न तत्वों और भूतों का अनुभव होता है। अतः जो आत्मा मूलाधार में है वह व्यक्त है, वह भी एक केंद्र है जहां पर हम आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। और जो आत्मा शुद्ध तत्व के रूप में है वह अव्यक्त है, और आज्ञा में जिसका निवास है वह भी एक स्थिति है जहां पर हम परा क्षेत्र में आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर परा और अपरा दोनों की चर्चा की जा रही है। ये दोनों लोक और दोनों अवस्थाएं आत्मा के प्रकाश से परिपूर्ण है। मूलाधार में जो आत्मा है वह कुंडलिनी के रूप में है, और भ्रू मध्य में जो आत्मा का रूप है वह प्रणव रूप है। इन दोनों पर जब ध्यान किया जाता है तब इस प्रकार के ध्यान से योग विज्ञान में पूर्णता प्राप्त होती है। शून्य अवस्था में जब हम पदार्थ और विषय को न देखकर मात्र आत्म प्रकाश का अनुभव करते हैं, तब स्पंदन या नाद की अनुभूति होती है। जब हम परानाद की पहुंच के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब वह प्रकाश या ज्योति का क्षेत्र कहलाता है। और जैसे जैसे हम शीर्ष के नजदीक आते हैं, मूल स्पंदन को सुनने में सक्षम हो जाते हैं। यह है ज्योति ध्यान। तीसरा ध्यान है सूक्ष्म ध्यान। तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम श्रुणुद में बहु भाग्य वसाधस्य कुंडलिनी जागृति भवेत। आत्मना सहयोगेन नेत्र रंध्र द्वि निर्गता विहरेन्द्र राज मार्गे च चंचलत्वात्र दृश्यते। शांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति। सूक्ष्म ध्यानमिदं गोप्यम देवा नापमी नापमी दुर्लभम। स्थूल ध्यानम चित्त गुणम तेजो ध्यानम प्रचिक्षते। तेजो ध्यानालक्ष गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात्परम इति ते कथितम चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम। आत्म साक्षात भगवेद्य स्मितास्तम ध्यानम विशिष्यते। हे चंड, तुमने तेजो ध्यान ज्योति ध्यान का श्रवण किया, अब मैं सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करता हूं। बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर और नेत्र रंध्र से निर्गत होकर ऊर्ध्व भाग में स्थित राजमार्ग नामक स्थान में विचरण करती है, परंतु सूक्ष्मत्व और चंचलत्व के कारण वह दिखाई नहीं देती। शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे, यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जो कि अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है, और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान 1,00,000 गुना विशिष्ट है। हे चंड, यह अत्यंत दुर्लभ ध्यान योग में मैंने तुमसे कहा है, इससे विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। महर्षि गिहरण सूक्ष्म ध्यान की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि साधक का सौभाग्य रहा तो इस ध्यान के द्वारा आत्मा से एक होना संभव है। कुंडलिनी की जागृति होने पर असीम सत्ता के साथ मनुष्य की चेतना का योग होता है, तब वह स्वयं आत्मा में बन जाता है। आत्मा में और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ सामान्यतः लगाया जाने वाला अर्थ नहीं है। सूक्ष्म ध्यान का यहां पर अर्थ होता है वास्तविक ध्यान। अब किसी प्रकार के अंतराल में हम नहीं, अब कोई दूरी नहीं, अब मैं प्रकाश पर ध्यान नहीं कर रहा हूं, वरन जिस केंद्र से उसकी उत्पत्ति होती है उसे मैं प्राप्त कर चुका हूं। जब मैं उस केंद्र को प्राप्त कर लेता हूं तब मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ध्यान का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि व्यक्ति जब उस अवस्था में पहुंच जाएगा तब वर्णन की आवश्यकता क्या है। इस ध्यान के विषय में मात्र इतना ही कहते हैं कि वहां पहुंचना अर्थात आत्म साक्षात्कार होना है, आत्म तत्व में से एक हो जाना है। तो गाइस यहां ये समाप्त होता है ध्यान। ध्यान कितने प्रकार का होता है इसको आप घेरण संहिता में पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं वहीं से पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं एक बहुत ही अच्छी किताब है घेरण संहिता जो स्वामी निरंजानंद सरस्वती जी ने लिखी है और इससे आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर सुनने पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप ये सुन सकते हैं। मेरे पॉडकास्ट पर काफी चीजें पड़ी हुई हैं और मैं बीच बीच में उनको अपलोड करता रहता हूं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं प्रदीप योगी से, आप फेसबुक पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपको नित नई जानकारियां और नित नई किताबों के बारे में और योग के बारे में और सनातन धर्म के बारे में आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।